कोई उनको प्रसाद दिया तो बच्चे खाया। स्पष्ट लिखा हुआ है जहाँ कहा सब पति पवन उद्धारण नाम धारण किया, जहाँ तहाँ जाएंगे जिसके सिंह गाय भैंस की तरफ गोता लगा देंगे, खा लिया उधर भुक्ति के लिए। ऐसा नहीं मांगिया खाइया करे जीवन यापन, इसके लिए ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए जहाँ तहाँ जाकर के बस जो इच्छा सो मिल गया उठा दिया भर दिया। वैरागी भैया करे जवाब परापेक्षा कार्य सिद्धि कृष्ण है कृष्ण करे नपेक्षा। वैरागी होकर के जो दूसरे के लिए अपेक्षा करता है वो मुझे ला के देगा, या उनके घर में मैं जाऊंगा तो घी वाला रोटी मिलेगा, कचौड़ी लड्डू मिलेगा, फल मिठाई मेरे मन को अनुकूल द्रावड़ी मिलेगा, होते हैं उनके लिए कार्य सिद्धि नहीं होगा। कृष्ण उपेक्षा करेंगे, कृष्ण उनको ग्रहण नहीं करेंगे। वैरागी भैया करे जीवा डालस परमात्म जायार हो रसेर बस। वैरागी होकर के जीवा का लालस करता है, जैसे चटपटी खाऊंगा, मीठा खाऊंगा और मुकिन खाऊंगा, विभिन्न प्रकार के लालच जीवा का लालच करते हैं। क्या हो जाएगा परमात्मा तो जाएगा ही और हो जाएगा रस के बसी भूत। आज एक दिन खाया ना दूसरे दिन लालच चलेगा। मैं बोलता हूँ क्या जन्म ले तुम लोग चाय पीते हुए जन्म हुआ क्या? उस समय भी जन्म ले तो चाय पिया, बीड़ी दारू पिया या सुबह खाया कि तंबाकू खाया? एक दिन खाया दूसरे दिन लालच लग गया, तीसरे दिन खाया करते 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 और उसके बुझभूत हो गया, आदि हो गया, अब उसके बिना चलता नहीं। इसलिए वैरागी होकर के जो जीवा का लालच करते हैं परमात्मा तो जाता ही है और रस के बसीभूत जाता है। इसलिए क्या बोला वैरागी करिए सदा नाम संकीर्तन शाक पत्र फल मूले उदर भरण। देखो पहले बोल दिया मांगिया खाइया कर जीवन जापन, और दूसरे बार में बस क्या बोले शाक पत्र फल फूले उदर भरण, गड्ढा भरना है। राबड़ी दे दो गले से उल्टा करके आ जाए तो चाट करके खाएगा नहीं, और सुंदर खाने से सुंदर टट्टी होगा सुगंध वाला, ये भी होना नहीं। तो बेकार किस लिए इतना चिंता, जो आसानी से पत्ता साग जो मिल जाता है। जीवा लालच जे समाज बेड़ा है कृष्ण दौर पर आए हम कृष्ण नहीं पाए। जीवा के लालच से जो समाज में घूमता रहता है, एक घर में गया तो दो रोटी मिल गया तो हो गया, नहीं अच्छे से अच्छा खाने के लिए अच्छे से अच्छा पहनने के लिए जो समाज में घूमता है कृष्ण उदर पर आया हम, उसका उदर भी धीरे 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 हो जाएगा उदरी रोग बहादुरी और इंद्रिया चंचल संभाल नहीं सकता। बोलते हैं जैसे खाएंगे मन जैसे खाएंगे अन्न ऐसा बनने का बन, मन जैसा पीएंगे पानी ऐसा निकलेगा पानी, बहुत कठिन। यदि भजन करना है तो इस बातों को खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जहाँ तहाँ मुँह चरण से नहीं होगा, और जैसे जैसे अच्छे से अच्छा मिल गया उसी को भर देने से नहीं होगा। किंतु नहीं विचार एक है कि यदि शरीर नहीं चलता है, एक समय मैंने सुना गुरु महाराज जी से कि किसी ने अपने महाराज जी के लिए दूध पीते थे तो गुरु भाई ने बताया ओ मठ के महंत बने बैठे हैं दूध पीते हैं, दो टाइम दूध आता है घी चार रोटी खाते हैं, हम लोगों को भूसा भी देखने को नहीं मिलता। गुरु भाई ने कुछ ने बोला महाराज जी दूध दूध पीना बंद कर दिया। तो गुरु महाराज उस समय सुने गुरु महाराज आए थे, गुरु महाराज बोले वो तो भैंस की तरह नाद में तो अपना 5-5 किलो एक बार में गलाब्धकरण कर सकते हैं, तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते, आप तो इतना से खाएंगे। तो जब आप इतना ग्रहण करेंगे आपको इतनी सेवा करना है तो एक बार दूध लेने से उसके तो नुकसान कुछ है नहीं, उन लोगों के समान यदि बराबरी करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल से समझा और बोले इन लोगों की बातों को आप ग्रहण करने जाते क्यों हैं? तो सबके लिए सब कुछ समान नहीं है, किसी के लिए दूध की भी जरूरत है स्थान काल पात्र, उनके लिए इंद्र चंचल होना या विषय ग्रहण करना उनके लिए नहीं है, उनके लिए विषय कुछ है ही नहीं। ये साधक के लिए विचार आता है, साधक भी यदि अनुकरण करे तो मरेगा, किंतु सिद्ध भूमिका में ये सब विचार नहीं आता है उनके लिए। सब कुछ ही एकादशी के दिन मंदिर के अंदर में गुरु जी के लिए महाप्रसाद निवेदन किया जाता है। गुरु जी एकादशी न भी करे तो दोष नहीं है, किंतु साधकों के लिए उनको ये साधन करना पड़ता है। वो बात सरस्वती ठाकुर किसी समय विदेश यात्रा में जा रहे हैं, उन्हें आदेश दे दिया जाओ आज उन्होंने डाल तरह सब करके भोग ला करके जल्दी जल्द ही जाएंगे, ये लोग जाएंगे। तो वो तो गोपाल है एकादशी है, बोले मैं जानता हूँ आज एकादशी है ना, ये तो अब 8 दिन 10 दिन से एकादशी करेंगे, अब क्या होगा। तो गुरुवर्ग के विचार और नित्य सिद्ध ब्रजवासी उनके विचार साधक के विचार क्या, दूसरे को एकादशी अन्न खाने देंगे, कठोर विचार। यदि खाया तो गोपाल भक्त गोस्वामी की तरह सदा टेक देंगे, वो भी विचार है। मैंने कभी
बोला
एकदम अगलो प्रमाणिक कथा है, मैंने गोड़िया से आते एकदम पक्का। শিবন মহারাজ গোস্বামী মহারাজ যাচ্ছেন বিদেশ, তখন প্রথমবার লন্ডনে যাচ্ছেন, তখন বলেছেন এরা তো আজকে খেয়ে যাচ্ছে, এরপর তো এরা তারা এক মাসের মধ্যে অন্য কোথাও পাবে না, কোথায় খাবেন, এক মাসে একাদশী হবে। গোরখুদার রাজ মহারাজ একাদশী দিন তো পতাই নেই ওর লাগাতার 10 দিন একাদশী কে খায়, বুঝলে বাবুজি মহারাজ আর তো খাই নেই, তা তো একাদশী আজ কে একাদশী এরকম তো হবে, तुम्हें वो पता नहीं हमारे एकादशी न लगातार 15 दिन 20 दिन एकादशी कर रहे हैं और वो प्रसाद के जिस दिन एकादशी है उनको पता ही नहीं है, उस दिन तो गोल सुंदर को देखा उन्होंने पा भी लिया क्या, कच्चा बैगुन कच्चा चावल है लाया भिक्षा मांग करके गंगा के पानी में भिगो दिया, काना बैगुन तो आँख तो है नहीं ऊपर से, तो हाथ से ही साफ सुथरा करके उसी का निवेदन कर दिया। वो महापुरुषों के लिए विचार नहीं आता तो उनके अनुकरण हम नहीं कर सकते। अब रघुनाथ दास गोस्वामी सलागा 3 दिन का बासी ड्रेन से लेकर खा सकते हैं, माठा पी करके रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते है? ये सबके लिए नहीं होगा, इसलिए बतलाया कि यथाशीघ्र भोग तथा ना ही रोग, जितना जरूरत देख करके छोड़ जाता है निर्भर, जिससे हरिणाम हो जिससे अनुकूल भजन हो वो सब चीज धर्म, अधिक चेष्टा करने की जरूरत नहीं। आप कृष्ण सब जानते हैं कि हम लोग हिंदी बोलते हैं नार दिया तो हार भी दिया है? वो व्यवस्था सब कर रखे, किंतु अधिक ग्रहण करने की जरूरत नहीं या कम ग्रहण की जरूरत नहीं, अधिक से अधिक साग पत्र फल फूल जितना आसानी से मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्भर करना है। अब दूसरे दिन स्वर्ग तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी को इन उपदेश के बाद में कुछ बताने लगे, क्या भक्त और अभक्त कौन है, भक्त का क्या आचरण होता है, अभक्तों का क्या आचरण होता है, ये सब चीज जानना चाहिए। अर्थात नहीं तो हम कौन भक्त है, कौन कैसा है, अभक्तों को भक्त मान लेंगे, भक्तों को अभक्त मान लेंगे, वैष्णव को अवैष्णव मान लेंगे और अवैष्णव को वैष्णव मान लेंगे। और सबसे समस्या है हम लोग के अंदर में इतना कमी है कनिष्ठ अधिकारी के अंदर में, कनिष्ठ अधिकारी जहाँ मध्यम अधिकारी में जाने की पैर रखने जाते हैं उस समय सबको देखते हैं सब प्रतिकूल है, ये भी प्रतिकूल है ये भी प्रतिकूल है, सबको त्याग देता है और सबको त्याग दे करके फिर संसार में प्रवेश कर जाता है। कौन बचाएगा उनको, क्यों, इनके अंदर दोष है, इनके अंदर दोष है, ये भी दोषी है, वो भी दोषी है, वो भी दोषी है। कंबल का रुआ साक्षा जा रहा है तो उनको कंबल ही नहीं रहता है, उधर जाता है कंबल। ऐसे ही कनिष्ठ अधिकारी जहां थोड़ा शास्त्र विचार सुना, तत्व विचार सुना गुरुवर्ग से, एक तथा सुन लिया और तो कुछ जानता नहीं, तो ये तो भोगी है, ये भी भोगी है, ये भी कर्मी है, ये जोगी है, उल्टा पुल्टा सोचते 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 और क्या करेगा, कैसा धन करेगा। माघ के महीना कला ठंडा, जो मना जी जाएगा नहा के आएगा, नंगा कपड़ा बदन में नहीं, चातुर्मास में मंदिर की दंडवती परिक्रमा देगा, गिरिराज जी की अधिक मास में दंडवती देगा, एक टाइम खाएगा हविचानन रस्ते बना के और एकादशी निर्जल रात्रि जागरण, और क्या करेगा कि मौन व्रत धारण कर लेगा, सब नियमों का पालन करने लगेगा। क्यों, शास्त्र में ऐसा बतलाया, ये लोग तो करते नहीं है, ये लोग सब भोगी नंबर ये, इन लोगों से हमारा नहीं पट सकता। कर लिया सब कुछ, रोज दिन परिक्रमा भी लगाएगा, सब कुछ कर लिया, इसके बाद में गुरु वैष्णव से किससे मन में है ही नहीं गुरु वैष्णव कोई। फिर बोलता है भिक्षा मांग कर खाने से क्या लाभ है, कुछ व्यापार वाणिज्य करने कुछ नहीं है तो मेहनत करके रोटी खाना अच्छा है, भिक्षा का लाकर खाएंगे तभी अच्छा है, किंतु दूसरे की अपमान क्यों खाएंगे, इसी क्या नियम है। और ये लोग तो दूसरे को से बातें कह करके चापलूसी की बात कहकर दूसरे से ऐट करके लाते हैं और बैठे बैठे मौज मस्ती करते हैं, बोलते ये वैष्णव धर्म है। बस ऐसे करते करते तो कुछ काम करने लग गए, दिन भर थक जाता है, शाम को आके अब रोशनी नहीं बनते हैं और कपड़ा नहीं धुपाते, कर नहीं पाते, तो अब तो भाई शरीर की शरीर जतन निर्वाह के लिए और दूसरे जीवात्मा को भी थोड़ा कल्याण करना है। जब जन्म लिया मनुष्य जन्म भारत भूमि से मनुष्य जन्म हो गया यार, अपन जीवन सार्थक करी करो पर उपकार, अपना जीवन सार्थक करना है ना तो कर तो लिया, अब भाई इस दूसरे का भी तो उपकार करना है, ये तो जन्म ग्रहण किया है इतना सुंदरी है, इन लोगों को घृणा करने से लाभ क्या है, उनको सुजोग देना चाहिए, दोनों जन मिलकर के भजन करेंगे, और बिना दिवस तो भजन होता नहीं, अकेले करें कैसे भजन होगा, तो युगल भजन करना है बस, तब ढूंढने लग गए कि कहाँ मिलेगा और कहाँ मिलेगा, तो कोई इधर हिंदी में बोलते हैं चुगे लोग बोलते हैं राण या डोकरी कोई ढूंढा करके विधवा तो 1 लाख रुपये, आपको तो कोई मदद करने वाला नहीं, किस नाम मैं सुनाऊंगा और आप मुझे थोड़ा मदद कर देना। बात करते 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 जन्म मिले, इसके बताते हैं कि गुरु वैष्णव कनिष्ठ अधिकारी गुरु वैष्णव के विचार था को नहीं समझ सकते, कभी यह तो बताया भालो ना खाईगा भालो ना पड़ी दे मंदिर में राबड़ी मलाई खरचूरा और मालपुआ तो सब दिन बनते हैं, देसी की पूरी पकवान बनते हैं, तो तुमको खाने के लिए किसने बोला, माफ कर खाओ जो तुम्हारे जितना जरूरत इतना लो है, इतना खिला देते हैं तेजाब बन जाता है, मरण हो जाता है, छटपटा हो जाता है, इंद्रिय चंचल हो जाता है, ये लोग भोगी हैं सब, नाम लेते भगवान की, तो ये जो निंदा तो क्या ग्रहण किया आश्रम में आके, अरे आश्रम नहीं है अड्डा खाना है, और पेपर में निकल दिया, अभी मेरे को किसी ने लाकर पेपर दिखा रहे हैं, बोलते मंदिर जितने हैं आप भारतवर्ष में कितने 350 मंदिर की दिया, 100 वर्षा खाना है व्यवस्था व्यापार, यहाँ पर मंदिर नहीं है, ये सब जो बातें आता है कब किसके लिए में आता है, संबंध ज्ञान नहीं आसक्ति रही संबंध सहित विषय समूह सफली माधव ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा कनो भोगेर जनक कनो के द्वारे सेवह माधव कामिनी काम नए तब धाम तहार मालिक केवल जादव, नहीं है संबंध ज्ञान नहीं है मतलब नहीं है किसी, तो ऐसे ही हो जाता है। इससे बताया भाई हरिकथा सुनते सुनते हम प्रार्थना कर सकते भगवान से या गुरु वैष्णव से, वो लोग शक्ति देंगे, आसानी से जीवन में आचरण में उतर आएगा, जबरदस्ती करने जाएंगे हरजोग हो जाएगा और बाद में खुद पालन नहीं कर सकते हैं। और 1 लाख नाम करने की चेष्टा करते हैं और रात को जगा, हम जब मठ में आए देखा हमारे 3 बजे उठते थे रोज दिन 2:30 3:00 तुम्हारा जी बारामदा था, उस हम सब बारामदा में सोते थे, नीचे जगह तो है नहीं, नाटकों भी छोटा सा जगह ही नहीं होता, बारंदा के ऊपर छत भी नहीं, तो तब भी हम लोग बारंदा में सोते क्या करें, महाराज 3 बजे उठते हरिनाम करते और मैं महाराज एक खट के नीचे ही सोता था उधर पास में, तो मैं भी सोता अब मैं भी उठू उठ कर माला ले ली, जब तक वो तो किया पाचारी किया था तो मैं हरिनाम कैसे से किया, थोड़ी देर बाद में बस महाराज जी मंगला जी के घर में गए, हम प्रलय में कहाँ पहुँच गए होते हैं, किस घर के कोने में कोई कोने में, और नहीं सोया सर दर्द बुखार पेट गर्म हजम ही नहीं होता है तो क्या होगा, अब आज उन लोगों की कृपा है तो आज तो ऐसे होता नहीं, तो अनुकूल वातावरण में या अनुकूल अवस्था में आने के लिए क्रमान्वय में धीरे धीरे क्रमपन हमें आना पड़ेगा, किंतु गुरु वैष्णव के ये लक्ष्य है कि ये मुझे करना है, किंतु एक दिन में तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए एक दिन में यदि सोचा कि मैं साग पत्ता फल फूल खाऊंगा और ये जो आता है राबड़ी मेलाई गुरुदेव दे रहे हैं, महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं, आओ इधर आओ, एक रसगुल्ला हाथ में दे दी, मेरा पेट भरा है, मैं नहीं खाता, मेरे को चाहिए नहीं, कर दिया ना बुझा गुरु जी की। कहा कितना भाग्य है गुरुपाद पद्म अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं, उसको व्यवज्ञा कर तो लेगा किससे, भगवान भी देने आएगा ना, तब कहेगा नहीं नहीं मैं बैरागी हूं, मेरा उधर वो हो जाएगा, उधर योग हो जाएगा और मेरा कृष्ण तेज हो जाएगा, मैं नहीं लेता। और गुरु जी के प्रसाद में भी देखेगा नहीं खाते हैं, तो ये बैराग्य करने से क्या इंद्र निवारण हो जाएगा, इसका नाम बैराग्य नहीं है। बैराग्य शब्द का तात्पर्य दिया विशेष रूप से अनुराग, गुरु एवं वैष्णव में जिस कार्य के द्वारा अनुराग वृद्धि हो, प्रीति वर्धन हो, संबंध ज्ञान हो, उनके साथ में हमारा ममता हो, वो कार्य को करना, उनके संबंध हो गया, उनके गुणावली उनके चरित्र के अंदर उनके गुण सब हमारे अंदर संचारित होगा, तो क्या होगा उस समय जड़ जो तामसी का रज सत्य ये जो अधिष्ठित देवता लोग हैं वो लोग उस समय आत्म नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बाल बाल करेंगे। इसलिए शरीर धर्म को परमात्मा के साथ में एक करना ये नियम नहीं है। अच्छा बुरा खाने का नियम छोड़ना है, महाप्रसाद खाएंगे, गुरु वैष्णव जैसे ग्रहण करते हैं ऐसे ग्रहण करेंगे, उसमें यदि कुछ विपत्ति भी आएगा उन्हीं के चरणाश्रय में हम पड़े वही जानेंगे, हम आश्रय में किसी जाएंगे नहीं। और भगवान यदि जानते हैं इस जीव को उद्धार करना है, अच्छे जैसे सदगुरु सब वैष्णव के लिए भेज देंगे, ये भगवान कंट्रोलर है, वो उनके पास मैनेजमेंट पावर है, हमारा आप तो केवल मात्र निमित्त मात्र, किंतु अब तो वो भी जैसे मिलाया हम छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि वहां जाने से मेरा अच्छा हो जाएगा, वहां ऐसा हो जाएगा है। अब फिर यदि प्रभु की इच्छा हुई तो वहां से कोई और कर देंगे, उन्नति अवनति की भार उनके ऊपर में है, शरणागत होना है, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जनम रस से विश्वास से गुप्ति वर्णन तो था आपका निश्चय पकापन में सर्विदा शरणागति, तो पहले तो शरणागति तो वो व्यवस्था तो वो करेंगे। इसलिए सुरदंड प्रभु अब रघुनाथ स्वामी को कुछ बातें और बतला रहे हैं। आर दिने शिशरो प्रभु नाते कहे तुम्हार निगुण किचू कही हो निश्चय। इसमें एक बात ध्यान रखना है, मैं थोड़ा याद आया कि कभी गुरुपाद पद्म के नाम उच्चारण कोई करे भाई लिखे तो पहले गुरुपाद पद्म लिखे, नहीं समझ में आया ब्रैकेट में नाम दे दे, किंतु पहले गुरुपाद पद्म लिखे, गुरु जी के नाम जैसे तैसे उच्चारण नहीं करे, अनुतुभा श्रील या ओम विष्णुपाद या आचार्य देव या गुरुपाद पद्म इस प्रकार से संबोधन करके इसके बाद में बोले, नहीं तो साधारण मत बुद्धि होकर के भक्ति भक्ति तो जाएगा कहीं, चित्त वृत्ति सरस नहीं हुआ उन्नत नहीं हुआ, जहां तक गुरुपाद में नाम उच्चारण करना नहीं चाहिए, लिखना भी नहीं चाहिए, बोलते समय प्रणाम करके उच्चारण करके या लिखते समय सम्मान के साथ, जैसे स्वामी जी के समय ये गड़बड़ी हुई थी, स्वामी जी को सभी लोग शिष्य लोग स्वामी जी करते, स्वामी जी बोले शिष्य स्वामी जी करते और नाम लेकर के यहाँ तक भी बोलते गुरु जी या गुरुपाद पद्म वो तो जानते नहीं, तो उन्होंने एक दिन अपने भाषण में बोला देखो हम लोग गुरु जी को अपने नाम लेकर कभी नहीं बोलते थे, हम लोग उनको प्रभुपाद कहते थे, गुरु जी के लिए प्रभुपाद कहा जाता है, ओम विष्णुपाद कहा जाता है, आचार्यपाद कहा जाता है या गुरुपाद पद्म कहा जाता है, तो उन लोगों ने सर्व सहज रूप में उनको प्रभुपाद प्रभुपाद कहने लग गए, किंतु अब इसको वो चेष्टा भी किया कि रोके, किंतु उन्होंने जो प्रभुपाद की व्याख्या की वो ऐसे प्रवेश कर गया इन लोगों के अंदर में, उन लोगों ने छाट भी कर फिर माना ही नहीं सुना ही नहीं, तो इसलिए गुरुवर्ग के नाम लेकर के कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। जब तक श्रील महाराज जी हमारे शिष्य शिष्य नहीं किए, दीक्षा नहीं दिए, तब तक तो सब भक्त लोग और तरह से बात करते। जब से महाराज दीक्षा देना शुरू कर दिया, आचार्य पद में प्रतिष्ठित रहे आए, सब लोग अब कोई भी नाम उच्चारण नहीं करते। मुझे टेस्ट शिक्षा शिष्य है या कोई भी है, पहले भी नहीं करते थे तो सम्मान के साथ भक्त भक्त नहीं करते। अब शिष्य लोग उनके नाम को उच्चारण करे जहां तक ऐसे लिख दे, ये तो ठीक नहीं है। क्यों? गलत चीज को सहन करना भी ठीक नहीं, हमें तो बुद्धि होना चाहिए, सीखना चाहिए सब। बताया श्रद्धाम प्रभु रघुनाथ दास स्वामी को कुछ निकुला तत्व अब बताने लग गए। क्या? भजन विहीन धर्म केवल कोई तो भजन ही धर्म का आचरण करना केवल कपटता मात्र है। कैसे? जीवन नित्य जन्म जार ज्ञा समय स्थिति तत्त धर्म देह यात्रा शुद्ध नीति यही मत देह यात्रा निर्वाह करिया निरंतर कृष्ण भजे एकांत भैया। जीवन नित्य जन्म जार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, चार आश्रम है। जो जिस वर्ण में जिस आश्रम में है, तो जन्म के साथ में तो कोई सन्यासी नहीं हुए, जन्म के साथ में ब्रह्मचारी नहीं बने। कोई भी किसी वर्ण और आश्रम में जन्म तो हुआ, तो यदि अपने अपने वर्ण और आश्रम में पहुंच गए तो क्या करें? तत्व धर्म में वहां से देह यात्रा करें, किंतु धर्म में सबके लिए जो धर्म है उस धर्म में प्रतिष्ठित हो, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर के तो देह यात्रा कैसे करेगा? उसके व्यापार है तो व्यापार में, सर्विस है सर्विस, अपने खेती बाड़ी है खेती बाड़ी, जो जिस कुल कंगन में आए जिस जैसे आए वहां से अपने शरीर यात्रा निर्वाह करे, किंतु कार्य क्या करें? निरंतर कृष्ण भजन करे। शरीर यात्रा ही सर्वोच्च नहीं है, शरीर को केवल पालन पोषण करने के लिए जितना जरूरत है इतना, और सबसे क्या करे? एकांत के रूप में कृष्ण का भजन करे। शेष सुबोध सुधार्मिक सुवैष्णव भजन विहीन धर्म केवल कोई तब, कोई सुबोध है और सुधार्मिक है सुवैष्णव है, अर्थात उनके बोध उनका ज्ञान सुंदर है और सुधार्मिक है, वो धर्म तत्व को विशेष रूप से सुंदर रूप से समझ गए हैं। सुवैष्णव क्या वैष्णव ही नहीं, सुवैष्णव ही बताया, अर्थात वो सुष्ठ रूप से वैष्णव धर्म की पालन करने के लिए आग्रही है और वो चेष्टा युक्त है। बताया भजन भी जो धर्म है केवल कपटता मात्र है। धर्म आचरण करते क्या? दान कर रहे हैं, छत्र खोल दिया, पानी की पियाव खोल दिया, या लोगों को कमल बांट रहे हैं, ये सब कर चले जा रहे हैं, किंतु भगवान के साथ संबंध नहीं, आचरण नहीं करेगा, खुद करता हूं ये सब चीज कपटता है, केवल मात्र अपना आत्मवंचना है, ठग है, दूसरे को धोखा देता है अपने धोखा में पड़ता है। कृष्णाय भजे करे धर्माचरण अत पद जायता मानव जीवन। अपना कृष्ण भजन नहीं किया, धर्म का आचरण भी किया तो क्या होगा? जैसे बतलाया चारों वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे सब सब कर्म करते से रौरव बड़ी मजी, चारों वर्ण और आश्रम के लोग यदि अपने धर्म का पालन करते हैं किंतु कृष्ण भजन नहीं करते तो अपने अपना कर्म करते हुए भी नरक यातना भोग करेगा, नरक जाएगा। ऐसा क्यों? अरे ये जो शरीर धर्म पालन किया, ये जल जगत के साथ संबंध रख करके जल जगत के कुछ जल देह की जल व्यक्तियों की उपकार किया, उससे तो आत्मा का उन्नति हुई नहीं, आत्मा का तो कल्याण हुआ नहीं, तो क्या कहा जाएगा? बेईमान तो हुए, खुद बेईमान, अपने आप 24 घंटा समय बर्बाद कर दिया, भगवत भजन किया नहीं, आत्मज्ञान लाभ किया नहीं, और दूसरे व्यक्ति को धोखा दे दी, उसको भी भजन करने में उपदेश नहीं दिया, सहारा नहीं दिया, बल्कि इन जगत जगत की वस्तुओं को देकर के उसको धक्का लगा दिया, ये हिंसा हुई, इस हिंसा के कारण नरक जाना पड़ेगा। जैसे माता पिता संतान उत्पत्ति की, पुत्र हुआ। अब एक तो नंबर है, पहले क्या किया, शरीर जाता किसी लिए बना, शरीर किसी दिया भगवान ने, भोजन करने, आत्मज्ञान प्राप्त करने, किया भोग, हुआ संतान। अब वो संतान होने पर उस संतान को भी अपने भोग में लगा रहा है, अपने सेवा में, बोलते हैं मेरी सेवा कर, मेरी बात सुन, कमा लिया और मैं जैसे कहता हूं कर, सभी युवा कर, गर्भवती कर, वो आएगी मेरी सेवा करेगी, सुन मेरी बात, क्यों देगा भगवत भजन करने, क्या होता है बाबा जी के चक्कर में। तो एक नंबर पहला भोग, दूसरा नंबर संतान उत्पत्ति की, उसको भी भोग में लगाया है। जो भी संतान हुआ वो भगवत भजन में लगा तो उनका भोग, उस संसार शरीर सुख भोगने का वो पाप भोगना नहीं हुआ, क्यों, वो भगवान की सेवा के लिए कुछ खेती किया है, संतान उत्पत्ति करके भगवत शिव में लगाया, कितना बड़ा बड़ा काम किया, तो इसलिए प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा कुछ तो किया है, केवल सारा जीवन बर्बाद नहीं किया, एक एक संपत्ति तो भगवान की सेवा में दिया, मेरे सेवा में, तभी दान के फल मिलेगा उसको, अर्थात उनका आत्मज्ञान हो जाएगा, बिना किए हो जाएगा। और नहीं तो बस वर्ण आश्रम धर्म पालन कर रहा है, कर्म कर रहा है, मरेगा। इसलिए कोई भी संतान माँ बाप की सेवा करता नहीं, बहुत कम मिलेगा, क्यों, माँ बाप भगवत भजन किया नहीं और भगवत भजन करने में लगाया नहीं और लगने देता नहीं, किंतु उनसे सेवा मांगता है, आखिरी दिन में देखा जाता है वो बेटा बाप की सेवा नहीं करता, माँ की सेवा नहीं करता, और माँ बाप भजन करते हैं और उनको भी भजन में लगाया, तो महाप्रभु आदेश देते हैं ऐसे वैष्णवों की सेवा करो, जब तक घर में माता पिता है ऐसे वैष्णवों की सेवा करो। किंतु उसमें से भी यदि रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह कोई है तो रहेगा, रघुनाथ दास गोस्वामी तो महाप्रभु ने आदेश नहीं दिया कि घर में रहकर भजन करो, ये बतलाया मरकट बेड़ा बनाकर लोग दिखाइया, यथाजोग्य विषय गुण जनाशक्त हो गया, अंतर निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तो मैं करीबे उद्धार, कृष्ण उद्धार करेंगे अंतर में निष्ठा करो, बाहर में लोक व्यवहार, और मरकट बेड़ागी की तरफ मत बनो, फिर दोबारा जब आए दोबारा ये उपदेश दिया, उठकर क्या गए तो, और वो क्या बोल रहे, वो प्रभु आपकी कृपा मेरे को विषय निष्ठा कि गड्ढे से उठा करके ले आए, देखो समझ रहे इस बात को, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु प्रदेश ग्राम वर्तना सुनिए, ग्राम वर्तना कहिए, भालो ना खाई गया भालो ना पड़िए, हमारी माना दे ब्रजराधा कृष्ण सेवा मानुषी करिए, तो देखो स्थिति है ना। और महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया, गोपाल माता पिता की सेवा करो, माता पिता वैष्णव है, पवन मिश्र को रघुनाथ भट्ट को उपदेश दिया, पवन मिश्र की सेवा करो, तो सब एक करेगा, वो लोग वर्णाश्रम धर्म के अंदर में नहीं है, अतीत है, आत्मधर्म प्रतिष्ठित है, इससे उनकी सेवा करने से वो सेवा ग्रहण करेंगे, कहीं एक वैष्णव से सेवा ग्रहण करूं, नहीं आप तो वैष्णव, पुत्र को वैष्णव ज्ञान करते हैं, आप तो आत्मा जीवात्मा वैष्णव है, भगवान के परिजन है, भगवान के पास सेवक है, तो आपसे सेवा क्या लूं, आप हम लोग से मदद कीजिए, कुछ हरिकथा सुनाइए या भगवान की सेवा में लगाइए, और तो वहां पर वैष्णव विचार आत्म धर्म का विचार आता है, ऐसी जगह में स्वस्वकर्म करके नरक में ले जाएगा, आप शरीर या प्रतिभाव के लिए जितना जरूरत इतना करेगा, ये धर्म अच्छा, किंतु इसमें भी बंधन होने का डर रहता है, इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने इसको भी दिव्यवर्णाश्रम की स्थापना कर दी। तो बता रहे इसलिए कृष्णाय भज करे धर्म आचरण अधपति जायता अनुमान भजीवन, कृष्ण भजन नहीं करते कब धर्म का आचरण करते हैं, वो अधपतन में जाएगा और मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। श्री ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी कृष्ण भक्ति शून्य असंभाष्य दीवानीसी, चाहे गृह हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थी या सन्यासी, जो भी कृष्ण भक्ति शून्य है उनको संभाषण मत करो, असंभाष्य है उनसे बात मत करो, असंभाष्य तो बिल्कुल बात करने के लिए मना कर दिया, संभाषण मतलब उससे बोली बोल चाल कुछ मत करो, क्यों बोलने जाओगे जवाहर परिजन की तरह आ जाएगा, संचित हो जाएगा, क्यों भूख वृत्ति है अंदर में, ज्ञात हुए नहीं और अपने आपको श्रेष्ठ मानते हैं, अपने विचार को श्रेष्ठ मानते हैं, सुनेगा किसी की नहीं, मानेगा किसी की नहीं, करेगा अपने मन की और हैदी हैदी करते रहेगा। क्यों? उसको अपने वश में करना है, अपने बातों में रखना है। मैं कितना महान हूँ, आपके सब बातों को मैं सहन कर सकता हूँ, किंतु पालन नहीं करेंगे उस समय जाकर के देखो नहीं। अब करे तो भगवान भजन करे, अच्छा भगवान कृपा करेंगे, आप लोग हमारे प्रणय में आदरणीय है, किंतु हमें तो रूपनाथ की अनुसरण करना है, हमें उधर जाना है ना ब्रज में। हमें अकेला गया, मेरे स्मरण करने वाले हजार व्यक्ति मेरे पीछे पीछे जाएगा। आज यदि मैं यदि खुद ही इन विषय के जंजाल से चित्त वृत्ति को उन रूप रघुनाथ के चरणों के आश्रय में नहीं भेज सका, तो हम उन लोगों के साथ में रहने से न उनका उद्धार है न मेरा उद्धार है। हम करेंगे क्या? हम तो किसी की थोड़ा भी उपकार नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हैं, यदि हम युद्ध बन जाए उनके सेवक दस अंदर कि उनका दासत्व मिले, तो फिर किसी के लिए कह सकते हैं।